ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल से 29 अरब 32 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली भारत और बांग्लादेश को की गई निर्यात। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने की शिष्टाचार भेंट। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को आगामी आश्विन 16 से 19 गत्ते तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय यथावत। और यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने बताया कि पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर 29 अरब 32 करोड़ 47 लाख रुपए की आमदनी की है। उन्होंने कहा कि वर्षा के मौसम में बिजली उत्पादन बढ़ने और घरेलू खपत के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने के कारण बिजली निर्यात करनी पड़ती है, जबकि सूखे मौसम में उत्पादन घटने पर भारत से बिजली आयात करनी पड़ती है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा कि नेपाल को यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा सूची से हटाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में सुधारात्मक कार्य योजना और संस्थागत सुधार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने बताया कि दुग्ध विकास संस्थान ने किसानों को 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। संस्थान के पास करीब 24 करोड़ रुपए मूल्य का दूध पाउडर और मक्खन का भंडार है। प्रतिनिधि सभा ने पासपोर्ट पहला संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि विधेयक विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों और आपात स्थिति में अस्थायी पासपोर्ट की व्यवस्था को कानूनी आधार देगा। बैठक में थारू आयोग की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की गई। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने शिष्टाचार मुलाकात की। रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे प्रधानमंत्री शाह से सेनाध्यक्ष सेठ ने आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री के प्रेस एवं अनुसंधान सलाहकार दीपा दहाल ने इसकी जानकारी दी। मुलाकात में नेपाल के लिए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल के औपचारिक निमंत्रण पर सेनाध्यक्ष सेठ 4 दिवसीय यात्रा के सिलसिले में रविवार को काठमांडू पहुंचे थे। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में उनकी पत्नी कोमल सेठ भी शामिल है। नेपाल और भारत के बीच वर्ष 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद महारथी का दर्जयानी चिन्ह प्रदान करने की परंपरा रही है। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच समन्वय के अभाव में कानून निर्माण में समस्या होने की बात कही है। विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि साझा अधिकारों के तहत कानून बनाते समय तीनों तहों के बीच पर्याप्त परामर्श नहीं होने से विवाद और अन्योल बढ़ रहा है। उन्होंने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना सहकार्य पर जोर दिया। संविधानविद डॉ खीमलाल देवकोटा ने कहा कि नेपाल में संघीयता का अभ्यास नया होने के कारण पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख ली जा सकती है। राष्ट्रीय सभा की संघीयता सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक में सांसदों ने नीति निर्माण के स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे समुदायों को आरक्षण और अवसर देने की आवश्यकता बताई है। सांसदों ने कहा है कि सरकारी नियुक्तियों में समावेशी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नीतिगत सुधार जरूरी है। उन्होंने महिलाओं, दलितों, दिव्यांगों तथा सामाजिक और जातीय रूप से पिछड़े समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अध्ययन और शोध पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि समावेशिता केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर नीति निर्णय और सार्वजनिक निकायों में समान अवसर और सहभागिता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने संविधान की उपलब्धियों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान संशोधन की पहल करने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे ने बताया कि संविधान में समसामयिक सुधार के लिए सर्वोच्च अदालत के सेनानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी के 15वें महाधिवेशन की मुख्य व्यवस्थापन समिति सभापति गगन कुमार थापा की अध्यक्षता में गठित की गई है। महाधिवेशन आश्विन 16 से 19 गते तक होगा। इससे पहले बड़ा, वड़ा, पालिका, क्षेत्र, जिला और प्रदेश स्तर के अधिवेशन की तारीख केंद्रीय निर्वाचन समिति तय करेगी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की ने कहा कि स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने की आयोग की जिम्मेदारी को समयानुकूल मजबूत बनाकर पूरा किया जाएगा। काठमांडू स्थित आयोग के कार्यालय में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तों और आयुक्तों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन में कानूनी, तकनीकी और व्यवस्थापकीय सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुदूर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और मानसून जनित आपदाओं के खतरे की चेतावनी दी है। इसके बाद जिला प्रशासन कार्यालय ने लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह भी किया है। इसी तरह भाद्र 2 गते रात 9 बजे से भाद्र 4 गते सुबह 5 बजे तक ग्रामीण कच्ची सड़कों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी मीना अर्याल ने दी है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण म्यागदी जिले में संचालित जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इसी तरह 20 मेगावाट क्षमता वाली 2 परियोजनाएं बंद हो गई है। सड़क मार्ग की खराब स्थिति के कारण निर्माण सामग्री, उपकरण और ईंधन की ढुआई नहीं हो पाने से धौलागिरी ग्रामीण नगर पालिका में निर्माणाधीन 4 जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आंतरिक राजस्व कार्यालय लहान के कर अधिकृत युवराज एमएस पाल सहित 2 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यूपाने ने बताया कि लेखा परीक्षण और कर निर्धारण के काम में सेवाग्राहियों से रिश्वत लेने के आरोप में पाल के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के पेचेनिही गांव में मंगलवार यानी कि आज सुबह रूसी मिसाइल हमले में कम 10 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल हमला गांव के एक व्यस्त चौराहे पर हुआ जहां डाकघर और कई दुकानें थी तथा आसपास आवासीय मकान थे। हमले के बाद कई वाहनों और इमारतों में आग लग गई है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनीहु बोब के अनुसार हमले में 10 निजी मकान, 1 कैफे, डाकघर, 5 दुकानें और 15 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि हमले में 2 छोटी बैंडेरोल क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल से 29 अरब 32 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली भारत और बांग्लादेश को की गई निर्यात। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने की शिष्टाचार भेंट। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को आगामी आश्विन 16 से 19 गत्ते तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय यथावत। और यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 10 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।